ये कैसी शादी है, शादी हम कर रहे हैं और शादी के बाद एक साथ नहीं रहेंगे। वो कहती है हां मैं इस ओर रहूंगी, बीच में एक झील होगी और तुम्हारे लिए एक महल उस झील की ओर बनाया जाएगा, तुम उधर और मैं इधर। यदि हां बीच में चलते चलते मिल गए तो मिल लिए, तुम उधर से नौका विहार कर रहे हो, मैं इधर से नौका विहार कर रही हूं और मिल लिए, अनइनवाइटेड, हाय बाय। वो कहता है ऐसी कौन सी शादी है, या ऐसी भी कोई शादी होती है, फिर शादी क्यों करना है। वो कहती नहीं, शादी मैं तो करूंगी तो ऐसी करूंगी, हां यदि तुम नहीं करना चाहते तो ना करो, परंतु मैं केवल तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारी याद में सारा जीवन बिता दूंगी। और ही ज्यादा मुश्किल। वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है क्योंकि जब दो व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं तो उनके प्रेम में जो शुद्धता है, फ्रेशनेस है, फैमिलियरिटी बढ़ जाती है, और जो एक दूसरे के प्रति प्रेम सम्मान वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए शादी मैं तुमसे ही करूंगी, पर तुम वहां रहोगे मैं इधर रहूंगी, बीच में मिल लिए तो मिल लिए। आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज द फ्रेशनेस इन दिस रोमांस। दो व्यक्ति एक ही साथ एक ही जगह रहे, परंतु बीच में झील हो, तुम उधर हम इधर। जैसे ही ज्यादा समीप आने का कोई प्रयत्न करता है, अवगुण दिखाई देंगे, दैहिक आकर्षण बढ़ेगा, हॉर्मोन्स हाईजैक्स द इंटेलिजेंस। इस देह में कुछ ऐसे तत्व है उछलते रहते हैं, वो बुद्धि को और विवेक का अपहरण कर लेते हैं। दो व्यक्ति चाहे स्त्री पुरुष हो या पुरुष पुरुष हो या स्त्री स्त्री हो, चाहे सेंटर में रह रहे, चाहे घर में या मधुबन में या और कहीं स्थान, हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में एक डिटैचमेंट हो। ज्यादा अगर समीप आने का प्रयत्न किया तो दुख होगा। दो व्यक्ति साथ रह रहे, पति और पत्नी है, यहां पर भी वही प्रिंसिपल है, डिटैचमेंट, तुम इधर हम इधर, बीच में एक झील। और जन्म जन्म से आत्मा ने दुख ही भोगा है काम से। सबसे ज्यादा विकर्म जो आत्मा ने किए हैं काम विकार से किए, क्योंकि काम विकार में 100% बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्रोध में इतना नहीं, लोभ में इतना नहीं। भगवान जो इस धरा पर आया है केवल और केवल पतित से पावन बनाने आया है, तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं। ब्रह्मा से बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पति का ताला, बुद्धि का ताला खोलने नहीं आया हूं, मेरा एक ही काम है, पतित को पावन बनाना। पतित उसे कहा जाता है जो काम विकार में जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता है। पांचवी मंजिल से गिरना काम विकार के लिए, क्रोध के लिए नहीं, काला मुंह करना क्रोध के लिए नहीं है, काम के लिए है। सारे विकारों का द्वार काम है, इसलिए डिटैचमेंट। दोष ना तो स्त्री का है और ना ही पुरुष का, उम्र का है। इसलिए वो सारे सेक्सुअल स्टिमुलस, उत्तेजक सबसे पहले बंद कर दिए जाए, उसको देह देखना ही नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 69 कुमारों से मुलाकात, ये शरीर जो है सांप है, सांप में विष होता है, वो सांप ने अगर काटा तो बच सकते हो, इस सांप ने काटा तो नहीं बचोगे। इसलिए स्वयं के अंदर पहले पवित्रता जगाओ, स्वयं को समझाओ बैठकर पवित्रता का क्या महत्व है। वो सारी दादियां क्यों इतना सहन किया सबने, वो सारी बहनें उन्होंने क्यों इतना सहन किया, चाहती तो संसार में जा सकती थी, वो भोगी जीवन जी सकती थी, परंतु सब कुछ तिलांजलि देकर सब कुछ त्याग कर इस यज्ञ में आई, और ये यज्ञ की आधारशिला ही पवित्रता है। यदि हम उसी में अगर कच्चे हैं तो क्या कहा जाएगा? सारे मार्क्स चाहे कितना भी ज्ञान करो, योग करो, धारणा करो, सब कुछ करो, यदि पवित्रता नहीं तो जीरो की कमाई चट होगी। फिर से प्रज्वलित करो पवित्रता की अपनी अग्नि अपने अंदर। ये जो संबंध है, विकार के जो संबंध उत्पन्न हो रहा है, उसका आधार भाव है। तीन तलों पर काम करना पड़ेगा, एक देह का तल, दूसरा विचार का तल, और तीसरा भावनाओं का तल, बॉडी थॉट एंड इमोशंस। बॉडी सबसे पहले, फिजिकल डिटैचमेंट, तुम उधर हम इधर, बीच में झील, मिल लिए तो मिल लिए, ओम शांति बाय बाय। थॉट, विचार को समझाओ, अपने आप को समझाओ, ये परिणाम है। पवित्रता की सारी मुरलियों को पढ़ो, पवित्रता की सारी क्लासेस को सुनो, पवित्रता के समान का अभ्यास करो, उन सभी बातों से स्वयं को अलग कर दो। वो सारे पोस्टर, वो सारे चित्र, वो सारे वीडियो, वो सारे ऑडियो, वो सारे टेक्स्ट, वो सारे नॉवेल्स, वो सारी किताबें, वो सारी बातें, वो सारी वस्तुएं, जो अपवित्रता के संकल्प उत्पन्न कर सकता है। और तीसरा भाव, अपने भाव को ही बदल दो। उस आत्मा को सुबह सामने इमर्ज करके उसको देवी रूप में देखो, महाकाली है जैसे, उसके हाथ में त्रिशूल है, महिषासुर मर्दिनी है, देवी है। अगर किसी मंदिर में कोई देवी है और उसके मंदिर में कोई जा रहा है और सबको पता चल जाए ये जो भाई आ रहा है इसके मन में विकार के संकल्प है इस देवी के प्रति, तो सारे मिलकर क्या करेंगे उसका? या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणि संसिताम, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणि संसिताम। अभी मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली, संडे को सभी कुमार हनुमान है और सभी अपने आप को बहने क्या समझे? शक्ति, शिव शक्ति सुमे। इसके लिए किसी को स्त्री नहीं देखो, किसी को बहन नहीं देखो, देखना है तो देवी देखो, जगत माता देखो या शिव शक्ति देखो। ये सब शक्ति नहीं अवतार धरे है, ये माताएं नहीं जगत माताएं हैं। अपने समान को, अपनी भावनाओं को, अपने रिलेशन को बदल दो। भावना के तल पर काम करना है, अपने आप विचार परिवर्तन होंगे। अभी कल्पना आ रही है, विजुअलाइज करो, फिर नई कल्पना का निर्माण करो, पवित्रता की कल्पना। देखो अमृत वेले रोज इमर्ज करो और उसको मेरी पत्नी, मेरी युगल, ये सारा छोड़ो। स्वयं आदिशक्ति है, जगत के कल्याण के अर्थ अवतरित हुई है। वो रामकृष्ण परमहंस थे, अपनी पत्नी की ही सेवा पूजा की थी उन्होंने, शारदा मां की। पूछा कि किस लिए आई हो तुम, क्या मुझे अपने साधना के पद से नीचे उतारने आई हो? शारदा मां ने कहा सा नहीं, मैं आपकी सहयोगी बनने आई हूं। उसी अपनी ही पत्नी को बिठाया और रात में अपनी ही पत्नी की आरती की और पूजा की। मां समझ जो उसको, इस संबंध में अपवित्रता नहीं आ सकती। शक्ति समझो उसको, देवी समझो उसको। केवल समझो नहीं, अमृत वेले अभ्यास करो कि ये देवी है और मैं इसके सम्मुख हूं। उसी रूप में उसको देखो, अष्ट भुजाधारी। दूसरा
प्रश्न भोजन के ऊपर है। एक आत्मा कहती है कि वैसे तो मैं अपना भोजन खुद बनाता हूं, लेकिन अगर कभी बीमार पड़े तो फिर घर में जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली है, उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाना पड़ता है, तो क्या करें? या फिर अगर बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो फिर अस्पताल का भोजन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे?
कुमार है, बाबा ने कहा है यज्ञ एक किला है, इस किले के अंदर तुम सुरक्षित हो। इसके लिए जो भी जहां भी कुमार है, जितना हो सके अपना एक संगठन निर्माण करे, और जो साथी कुमार है वो उसकी मदद करेंगे। ऐसा हमने कई सेंटरों पर देखा है कि जब भी कुमार जो कि भोजन खुद बनाते हैं और जिस दिन बीमार पड़ जाते हैं वो सारे साथी उनको मदद करते हैं। एक दूसरा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खाई जा सकती है जो कि बनाई हुई नहीं है और पकाई हुई नहीं है। अगर ऐसी, सबसे पहली बात तो स्वयं को स्वस्थ रखा जाए, ऐसी कोई चीज ना करी जाए कि जिससे हम बीमार पड़े। अधिक भोजन या भोजन न करना या गलत भोजन करना या अधिक गलत मात्रा में भोजन करना और उसमें बहुत स्वाद हो और बहुत गरिष्ठ हो और बहुत तेल वाला हो और बहुत मसाले वाला हो और बहुत मिर्च वाला हो, ऐसा हम खाए ही क्यों? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने तरफ है इस देह को स्वस्थ रखने की। जब जब हम बीमार पड़ते हम प्रकृति के विरुद्ध गए हैं कहीं ना कहीं, पहली बात ये। फिर परंतु हां, यदि कभी बीमार पड़े भी और फिर लाचारी की हालत हो तो फिर ठीक है, परंतु उसमें भी ये प्रश्न और एक हो सकता है, ये घर में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? अगर घर पे ही रहते हैं तो वहां पर भी मदद ली जा सकती है, उसमें भी फिर घर वाले सहयोगी है विरोधी है कैसे है? अगर सहयोगी है तो वो चलो बाबा को याद करके नहीं, भगवान के भक्त है या नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें है, जो भी भाई है हमसे बाद में मिल सकते हैं, उसको देखकर फिर हम उसको स्वीकार करें। या तो कोई माता यदि मिल जाए जो हमको एक दो दिन भोजन दे दे, टिफिन दे दे, या कोई कुमार, कोई साथी, कोई दोस्त अगर है उससे थोड़ी सी मदद ली जा सकती है उस समय। उसके लिए पहले कहा कि एक संगठन हो कुमारों का कि जो आपस में एक दूसरे की मदद करे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां कुमारों के सामने बहुत आएगी। सबसे बड़ी माया जो आती है कुमारों के लिए वो भोजन की आती है, भोजन, और ये केवल यहां ही नहीं विश्व भर में। सबसे पहली बात तो अपना भोजन खुद बनाना सीखना, और जब बीमार पड़ जाए उस भी हालत में थोड़ा बहुत तो बनाया जा सकता है। यदि बहुत ही ज्यादा बीमार है तो किसी माता की मदद लो, और अगर कोई नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, तो फिर हाँ घर वाले जो बना रहे। दादी प्रकाशमणि से यह प्रश्न पूछा गया था कि दादी कुमार है हम और माँ के हाथ का छोड़ दे क्या खाना? दादी ने कहा था नहीं, माँ के हाथ का खा सकते हो, बाकी किसी के हाथ का नहीं खाओ, माँ के हाथ का अलाउड है, आपकी जो माँ होगी उसके हाथ का अलाउड है। तो जो भी वो भोजन बनाए उनको उस भोजन को शक्तिशाली दृष्टि देकर अपनी किरणों से पवित्र कर बाबा के आगे भोग लगाते हुए या मन से अर्पण करते हुए उसको फिर खाना है, तुरंत नहीं खा लेना है। और बीमारी के समय तो हम देखते हैं पेशेंट्स की भूख बहुत कम हो जाती है, कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं होती, परंतु जो भी है उसको समर्पण भाव से स्वीकार करना, ऐसे स्वीकार करना कुछ ना कुछ सामान लेके, मैं आत्मा लाइट हूं, लाइट की थाली में भोजन है, भोजन भी लाइट है, मुझ आत्मा की आंखों से लाइट की किरणें इस भोजन में जा रही है, एक एक निवाला, एक एक गिट्टी, एक एक कौर जो मेरे शरीर में जाएगा मुझे संपूर्ण स्वस्थ निरोगी निरामय कर देगा, इस संकल्प के साथ उस भोजन को स्वीकार करना, संपूर्ण प्रेम के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ, सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशंस, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देते हुए कि ये भोजन खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। निगेटिव चलता बहुत है बीमारी के समय, ये क्या हो गया, मुझे बहुत सेवा करनी है, ऐसा क्यों हो गया, नो थॉट। इसके लिए पहले तो ज्ञान से अपने आप को परिपक्व रखना है, और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है उस परिस्थिति को भी प्रेम से स्वीकार कर लो। मदद लेनी है तो मदद लो, अगर कोई भी नहीं है मदद करने का तो भगवान भी मदद करेगा उस समय, कुछ ना कुछ वो अरेंज करेगा जरूर, परंतु अर्पण करना भूलना नहीं है।
तीसरा प्रश्न है कि मैं बहुत लंबे समय से ज्ञान में हूं और जॉब भी करता हूं, लेकिन मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं वो आकर मेरे जो ऑफिस है मेरा समय बहुत वेस्ट होता है, बीच में आकर बात करते हैं, लंच साथ में करते हैं, तो तो मैं जो मेरा वर्क प्लेस का समय है उसको कैसे बचाऊं?
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में मानस में कहा हुआ है, प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात पहली भक्ति है सत्संग करना, पहली भक्ति है योगियों का संग करना, अर्थात महान आत्माओं का संग करना। संसार में निगेटिव वातावरण बहुत ज्यादा है, इसलिए हर एक अपने एक छोटे संगठन से जुड़ा रहे, जहां ज्ञान की चर्चा हो, ज्ञान की लेन देन हो। जैसे ही ऑफिस में जा रहा है व्यक्ति, सुबह मुरली सुनी है, शक्ति थोड़ी सी ली है, परंतु चिंतन बहुत कम है। जिस परिधि में वो एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, जिस ऑर्बिट में, जिस सर्कल में, वो सारे बाहर के लोग हैं, निगेटिविटी से भरे हुए हैं, शायद विरोध करे, चाहे मजाक करे, हंसी उड़ाए, कुछ कुछ कहे, आ गए योगी जी, ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये आ गए ओम शांति वाले और बहुत सारी बातें। सबसे पहली बात है, हो सकता है ये जो आत्मा है उसको खुद ही रस है उन चीजों में, व्यर्थ में, इसलिए तो वो आ रहे हैं। यदि हमारे अंदर जरा भी रस नहीं है व्यर्थ में, तो दूसरी आत्माएं भी आने की हिम्मत नहीं करेगी। हमने ही उन्हें परमिशन दी है, अलाउड किया है, चाहे दोस्ती की खातिर या किसी और की खातिर। वो जो सरदार जी होते हैं संदान में, वो अपनी पगड़ी निकालते हैं क्या? लोगों के डर से लोग क्या कहेंगे? हम अपनी धारणाओं को दूसरों के सामने क्यों कम कर रहे हैं? शायद धारणाओं में कमी है, शायद रंग बिरंगी कपड़ों का मोह अभी तक गया नहीं है, शायद ये बैच लगाने में भय लगता है, शायद उनके सामने अपनी धारणाओं को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये सारा किया है लंबे समय तक इन्होंने भी, इसलिए वो लोग भी मानकर चलते हैं। यदि हम पक्के होते तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, किसी की कोई हिम्मत नहीं हमारे पास आने की। उस नेगेटिविटी वातावरण से भी हम दूर रह सकते हैं। दूसरा, कई मुरलियों में बाबा ने एक स्वमान दिया है, अव्यक्त महावाक्य है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इस स्वमान का अभ्यास करो तो वातावरण को बदल दोगे। अभी अभी संडे मुरली थी, मास्टर क्रिएटर हो तुम, मास्टर क्रिएटर अर्थात रचने वाले, रचना करने वाले, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, बाप समान आत्मा, अर्थात वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, अर्थात वाइब्रेशंस को फैलाने वाले, आत्मा को जो चाहिए वो देने वाले। शायद हम समान में नहीं है, शायद हम अपनी सीट में नहीं है, इसके लिए तो फिर स्पिरिचुअल हार्ट अटैक, पसीना, दिल शिकस्त का, उमंग उत्साह की पल्स स्लो, स्मृति का प्रेशर स्लो, सारे चिन्ह बताए थे बाबा ने अभी अभी संडे की मुरली में। सबसे पहले स्वयं को समान से भरना, अपनी धारणाओं को पक्का करना, और उनके साथ में हंसी मजाक, ज्यादा मिलना जुलना, ये सब किया है वो उधर, हम इधर, बीच में झील जो थी उसको भूल गए, फैमिलियरिटी आ गई है। हाँ, प्रोफेशन में काम करना पड़ता है, साथ में करो, उनके साथ रहो, परंतु दे शुड नॉट एनक्रोच अपॉन यूअर पर्सनल लाइफ, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश ना कर सके, उसको अलग, ये अलग, ये प्रोफेशन, ये पर्सनल लाइफ, स्वयं को डिटैच करो उनसे, शायद इसी आत्मा का उसमें मोह है, उन सब में। ऊपर से दिख रहा है ये विरोध कर रहे हैं, ये हंसी उड़ा रहे, परंतु मोह इधर भी है। पहले तो अपने आप को मोह से मुक्त करो, उनके मोह से, और अपनी धारणाओं को और मजबूत करो।
अगला प्रश्न ये है कि मैं बहुत समय से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हूँ, परंतु बाबा का बनने के बाद बाबा को याद करते वक्त बहुत सुख की अनुभूति होती है, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे ये दवाइयां छूट जाएं?
डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं, कुछ कुछ परिस्थिति जन्य होते हैं, किसी के जीवन में बहुत खराब घटनाएं हुई है, इसलिए कुछ चाइल्डहुड अब्यूज के बारे के कारण होते हैं, पेरेंटल अब्यूज के कारण होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण होते हैं, उसके हजारों कारण हैं। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है बिना कारण से नहीं जाता है। एक ब्राह्मण जो डिप्रेशन में जाता है वो स्पिरिचुअल डिप्रेशन होता है, एक प्रकार का पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है इसलिए डिप्रेशन, लोग नहीं सुन रहे, परिस्थितियां प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है इसलिए डिप्रेशन, संघर्ष कर रहे, बार बार हार हो रही है इसलिए डिप्रेशन। जो भी डिप्रेशन है सबसे पहले हर व्यक्ति को यह ढूंढना है मेरे इस विषाद का कारण क्या है, क्यों, कहां है बीज, शायद ज्ञान में आने के पहले कहीं है, चाहे बचपन में है माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, चाहे स्कूल में है बच्चे सब चिढ़ाते थे, शायद कॉलेज लाइफ में है किसी से प्यार हो गया उसने मना कर दिया और वो दबा भाव और फिर ज्ञान में आ गए और वो सारा जो है बचपन का हीलिंग हुआ ही नहीं, उसका अभी भी खून बहना चालू है। पहले तो यहां अपने अवचेतन मन की स्टडी करनी है कि मेरे अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा है, किस पॉइंट में वो ट्रॉमा हुआ है, कहां मैं हर्ट हुआ हूं, किसी ने सबके सामने अपमान कर दिया और हमने सह लिया, बदला ले नहीं सकते थे, बड़े हैं और वो वैसा ही रह गया, वो घाव अभी भी है। और फिर धीरे धीरे जब कोई दूसरी परिस्थिति आ जाती है वो घाव बाहर आता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बहुत सारे, उनकी कमी हो जाती है, उनकी कमी होने के बाद में और डिप्रेशन, फिर ट्रांसमीटर, ये एक कुचक्र है। और जब व्यक्ति लंबा समय तक इसमें रहता है, एकदम नहीं तोड़ सकता, वो अचानक बाबा का अनुभव हो गया, आंसू आ गए, मधुबन चले गए और कुछ कुछ हो गया, इससे वो चक्र इतना आसानी से नहीं टूटने वाला, क्योंकि लंबे समय तक पाला है। एंटी डिप्रेशेंट्स क्या काम करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो गए हैं इनकी लेवल्स बढ़ाएंगे और धीरे धीरे मूड इंप्रूव होगा। इससे मुक्त होने के लिए ये लक्ष्य नहीं रखो कि मुझे गोलियों से मुक्त, गोलियों से मुक्त होने के बाद में भी व्यक्ति जरूरी नहीं है पूरा अच्छा सुखी है, जो सुखी दिख रहे हैं वो भी दुखी है अंदर से, खाली गोलियां नहीं ले रहे। अपने आप को कुछ ट्रेनिंग देनी है, क्रिएटिव कुछ काम करने, कुछ ऐसी नवीनता लानी है जीवन में, नए स्थान पर जाना है, कुछ नई सेवाएं करनी है, अपने आप को एंगेज रखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, नई नई टेक्निक्स, कि धीरे धीरे इसका विचार ही चला जाए, अपने आप को ऐसे संग में रखना है जहां उमंग उत्साह बढ़े, तो धीरे धीरे ये जो गोलियां है उसका डोज कम कम होते होते, चार चालू है तो तीन होगी, तीन से दो, दो से एक, एक का भी डोज परंतु धीरे धीरे ही कम करना। एकदम यदि छोड़ दोगे या बंद कर दोगे तो रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके लिए खुद नहीं करना है, डॉक्टर को डिसीजन देने दो और अपने तरफ से आध्यात्मिक रीति से सारे पुरुषार्थ करते रहो। कोई ना कोई क्लास रोज सुनो, एक क्लास रोज सुननी है, सुबह एक क्लास, शाम को एक क्लास, वॉकिंग पे जाओ, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, एकांत में जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं शरीर में। कोई जिम ज्वाइन करो, कोई वेलनेस क्लिनिक ज्वाइन करो, कोई एक्सरसाइज करो, किसी गार्डन में जाओ, रोज टेरेस में जाओ, अपने आप से बात करो, दूसरों से ग्रुप फ्रेंड सर्कल क्रिएट करो, ये सारी चीजें करो तो वो डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म होगा और दवाइयां कम होने लगेगी।
अगला प्रश्न जो है वो क्रोध के ऊपर है, इसमें दो प्रश्नों को कंबाइन किया है। पहला प्रश्न था कि मैं क्रोध से मुक्त कैसे हूं, और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं और पूरे दिन चिल्लाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए।
सबसे पहला प्रश्न है क्रोध को कैसे जीते, ये प्रश्न ही गलत है। जैसे ही हम संकल्प करते मुझे किसी को जीतना है, संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, जैसे वो कोई है और मैं ये हूं, लड़ाई है। जैसे कि किसी घर में प्रकाश अंधकार है 1000 साल से, और हमने तय कर लिया कि इस अंधकार को निकाल के रहेंगे और तलवार लेकर गए और अंधकार से लड़ रहे, निकल बाहर नहीं निकला, सेना लेकर आए, लड़ाई की अंधकार से, परंतु अंधकार जल निकल ही नहीं रहा है, फिर दुखी है, इतनी बार तो लड़ा परंतु अंधकार जाता ही नहीं और उदास है। संघर्ष क्या करना पड़ेगा, दिया लाना पड़ेगा। क्रोध अंधकार है, उसको जीतने का संकल्प हटा दो, उससे परे चले जाना है। जैसे ही जीतने का सोचोगे, एक अव्यक्त वाणी है 27th December 1979, शायद सारी अव्यक्त वाणियों में एकमात्र अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, पांच विकारों को तुम्हें जीतना नहीं है, लड़ाई मत करो। उदाहरण दिया है उसी मुरली में, यदि लड़ाई करोगे तो हालत ऐसी होगी जैसे किसी राजा को तुमने हरा दिया तो वो राजा बदला लेगा। इसके लिए रूपांतरण, सब्लिमेशन, उसको परिवर्तन कर दो, उसकी दिशा बदल दो। काम है, शुभकामना में परिवर्तन कर दो। क्रोध है, क्रोध की दिशा बदलो, उस दिशा में नहीं जाने दो। क्रोध आ रहा है, स्वयं को देखो, ये मैंने क्रोध किया। क्रोध एक क्षणिक विक्षिप्तता है, ट्रांजिएंट मैडनेस की अवस्था है। अपने आप को देखो, ये क्रोध किया, क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुई, परिणाम क्या निकला। अगर इसी परिस्थिति को बिना क्रोध के किया गया होता तो क्या होता। क्रोध को जीतना है धैर्य से, क्रोध को जीतना है साक्षी अवस्था से, क्रोध को जीतना है मौन से। जर्मनी में बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर एंड थिंकर जॉर्ज कुर्जियफ, उसने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे पिताजी ने मुझे जो एक बात बताई मैं अब तक नहीं भूला। मेरे पिताजी मरणासन्न थे, मरने को थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं 7 साल का छोटा सा बालक था। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे तेरे पास, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दूं, पर एक शिक्षा मैं तुझे देता हूं, वो हमेशा याद रखना। जब भी तुम्हें किसी पर क्रोध आए, उस समय तुरंत क्रोध ना करना, 24 घंटे के बाद करना। और उसके पिताजी शरीर छोड़ देते हैं। वो लिखता है जॉर्ज कुर्जियफ कि ये शिक्षा ने मुझे जीवन भर काम आई। किसी ने अचानक मुझ पर आरोप लगा दिया, ये गलती तुमने की है, ये चोरी तुमने की है, और मुझे लगा कि मैं भी क्रोध करूं और कुछ बोलूं, पर मैंने अपने आप को शांत कर दिया 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद क्रोध विलीन हो गया। अपने आप को देखो, ये क्रोध की अवस्था है और मैं क्यों कर रहा हूं। जागरण की आवश्यकता है। क्रोध अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। क्रोध के विषय में ज्ञान बढ़ाओ, सारे आर्टिकल्स पढ़ो, हाउ टू कॉन्कर एंगर, जितने संसार में लिखे, बाहर के लोगों ने, बाबा ने क्या क्या कहा है, उसके विषय में अपना ज्ञान बढ़ाओ। और उस इमरजेंसी सिचुएशन में कौन से इंजेक्शन दिया जाए खुद को, क्या करे, वहां से निकल जाए, वहां से चले जाए, चुप रहे, खुद ही सोचो। और रही बात बच्चों की, बच्चे वही करेंगे करेंगे जो हम कर रहे हैं। जब हम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, धीरे धीरे वो भी होंगे। वो हमें ही देखकर सब कुछ कर रहे हैं, हमको, हम जैसा करेंगे वैसा वो करेंगे। और दूसरी बात, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है हर घर में, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते उनको। हर एक व्यक्ति, किसी जन्म में तुमने उसको बहुत दुख दिया है, अब वो आया है पालने में, तलवार लेकर आया है, पर उसके हाथ में तलवार देख लेना, अदृश्य तलवार, हिसाब किताब चुक तू करने आया है, ऐसे ही नहीं आया है। उसका स्वभाव हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे प्यार से समझा सकते, शिक्षा दे सकते धीरे धीरे, परंतु जबरदस्ती नहीं कर सकते। और विस्तार बहुत है, समय कम है, पर लास्ट क्वेश्चन, फिर एक एक्टिविटी करनी है।
लास्ट क्वेश्चन है कि अपने विचारों में और अपने एक्शंस में डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस कैसे लेकर आए।
इंग्लिश में कहावत है, यू डू इट बाय डूइंग, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते रहो, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, रसरियावत जात है सिल पर पड़त निशान। निशान पड़ जाएंगे, अभ्यास चाहिए, अभ्यास, संकल्पों का अभ्यास, संकल्पों को रोकना, रोकने का अभ्यास। कल की अव्यक्त वाणी, आने वाले कल संडे, अव्यक्त महावाक्य, एकाग्रता को बढ़ाओ, मन को जहां लगाना चाहो, जिस समय लगाना चाहो, और जितना समय लगाना चाहो उतना लगा सको, इसको कहेंगे एकाग्र बुद्धि। तो प्रैक्टिस करनी है, संकल्पों की प्रैक्टिस, कल्पना की, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस, नए नए क्रिएटिविटी थॉट लाओ मन में और उनके परिणाम देखो, ये विचार था ये, इसका परिणाम ये हुआ। डिटर्मिनेशन, एक चीज ठान ली अब छोड़ना ही नहीं उसको, जब तक ना कर लो। कितने भी बाधाएं आए, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार पिसरती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिद्धू में गोताखोर, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयत्न करते रहना है। ओम शांति।